الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم جلیل القدر علماء کرام مشائخ اعظم ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اولاد غوث جیلانی شہزادہ مخدوم سمنانی جانشین قطب ربانی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نبر اللہ مرقدہ کی 19ویں سالانہ فاتحہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ گویا حضرت کو ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے 19 سال گزر چکے ہیں، کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، لیکن ان کی یادیں اور ان کی باتیں آج بھی ہمارے دلوں میں اسی طرح محفوظ ہیں۔ 1961 میں قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے وصال فرمایا اور حضرت اشرف المشائخ مسند رشد و ہدایت پر رونق افروز ہوئے۔ 44 سال آپ نے مسند سجادگی کو رونق بخشی، اور جس وقت آپ مسند رشد و ہدایت پر رونق افروز ہوئے تو یہاں پر کوئی عمارت نہیں تھی، جنگل تھا، ہر طرف درخت تھے، چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیواریں، ایک باؤنڈری وال بنا دی گئی تھی تاکہ حدود کا تعین ہو جائے کہ یہ درگاہ شریف کی حدود ہیں۔ بالکل ابتدا کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک مزار تھا، ایک ولی زمین کے نیچے اور ایک ولی زمین کے اوپر، اور جو ولی زمین کے نیچے تھا وہ فیض دے رہا تھا، جو اوپر تھا وہ فیض لے رہا اور فیض بانٹ رہا تھا۔ حضرت اشرف المشائخ کے پیش نظر دو چیزیں تھیں، ایک درگاہ شریف کی تعمیر اور دوسری رشد و ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جنگل میں جہاں ہر طرف درخت ہے، کوئی سائے دار جگہ نہیں، کہاں بیٹھیں کیا کریں، پہلی مرتبہ حضرت درخت کے نیچے بیٹھے اور وہیں سے آپ نے سلسلہ شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اسلام کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ اسلام کا ظاہر شریعت ہے، باطن طریقت ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری احوال شریعت ہیں اور باطنی احوال طریقت ہیں۔ حضرت اشرف المشائخ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے اللہ کے گھر، شریعت کا کام پہلے، نماز پڑھا کر افتتاح فرما دی، اپنے مرید فیض محمد اشرفی کو یہاں پر امام مقرر کیا، لیکن خطابت اپنے پاس رکھی۔ جمعے کی خطابت امامت آپ خود نماز خطبہ خود فرمایا کرتے تھے۔ سلسلہ شروع ہو کے جامع مسجد قطب ربانی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اب مسئلہ تھا مریدین کی تربیت کا، تو حضرت اشرف المشائخ نے خود جتنے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہے ہیں آپ نے خود ترتیب دی۔ ہر جمعرات کو 10 بجے ذکر حلقہ، ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ ختم خواجگان، اور اس زمانے میں ہر ہفتے کو آیت کریمہ کا ختم سا بلا جو بعد میں نوچندی جمعرات میں منتقل کر دیا گیا، اور اسی طرح 17 اور 27 چاند کی حضرت مخدوم سمنانی اور حضرت قطب ربانی کی ماہانہ فاتحہ، یہ تو تھے ہفتے واری پروگرام۔ اس کے بعد سالانہ پروگرام، جتنی بھی مقدس راتیں شب معراج، شب برات، شب قدر، شب میلاد، شب عاشورہ، جتنی بھی مقدس راتیں ہیں ان سب میں شب بیداری کا پروگرام ایک منظم طریقے سے حضرت نے یہ پروگرام جاری کیا، اور خود اس میں تشریف فرما ہوتے، مریدین آتے، اگرچہ اس زمانے میں اتنا مجمع نہیں تھا، آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا رہا، رونق میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ سارے پروگرام حضرت نے جاری فرمائے، جب تک یہ پروگرام جاری رہیں گے لوگ شرکت کرتے رہیں گے، ثواب ان کی روح مبارک کو پہنچتا رہے۔ کتنی درگاہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، کراچی میں اور کراچی کے باہر، اللہ ماشاءاللہ بہت ساری، لیکن اتنا منظم طریقے سے انتظام کہیں پر نہیں پایا جاتا۔ ہفتے واری پروگرام، سالانہ پروگرام، یہ ساری چیزیں حضرت نے قائم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ حفظ نادرہ کا یہ بھی قائم فرمایا، جامع طاہر اشرف کے نام، یہ ساری ابتدا حضرت نے کر دی اپنی حیات مبارکہ میں۔ مسجد اس وقت چھوٹی تھی، آج آپ دیکھ لیں شاندار مسجد، مزار مبارک صرف ایک حجرے میں تھا، آج ایک شاندار مقبرہ آپ کے سامنے موجود۔ اسی طرح ابھی بھی تعمیر جاری ہے، یہ سارے سلسلے حضرت نے شروع کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک آدمی ایک شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا دھیان صرف اسی طرف ہوتا ہے، مثلا کوئی مدرس ہے صرف تدریس میں لگا ہوا ہے، کوئی مقرر ہے صرف تقریر میں لگا ہوا ہے، کوئی لکھاری ہے مصنف ہے تو لکھنے میں لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک اس کو کسی اور کام سے غرض نہیں۔ لیکن حضرت اشرف المشائی کی شخصیت وہ تھی کہ آپ حامہ صفت موصوف شخصیت، آپ مبلغ بھی تھے، خاموش مبلغ، شیخ طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے، عالم با عمل بھی تھے، صوفی با صفا بھی تھے۔ اچھا، بہت سے علماء اپنی اولاد کی تربیت سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کی اولاد کا سلسلہ، ان کی لائن الگ ہو جاتی ہے۔ حضرت نے جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی، اسی طرح اپنے مریدین کی بھی تربیت کی، اس لیے کہ اولاد ان کی سلبی اولاد تھی، جتنے مریدین تھے یہ ان کی روحانی اولاد، آپ سب ان کی روحانی اولاد، اور تربیت فرمائی، اور تربیت کا انداز دیکھیے۔ ہم بھائیوں میں اور بہنوں میں کسی کو کبھی بھی ایک ہاتھ تک نہیں لگائے، لوگ بچے غلطیاں کرتے ہیں نا، ماں باپ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن حضرت کی یہ شان تھی کہ کبھی بیٹی کو یا بیٹے کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ہلکا سا تھپڑ بھی نہیں لگایا، لیکن رعب ایسا تھا کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لیا وہی اپنی جگہ دمبا خود ہو۔ ان کی ناراضگی اگر ہوتی تو صرف نماز قضا ہونے پر، شریعت کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، ہاں اس کے علاوہ تو اس میں پھر رعایت۔ اسی طرح مریدین کے لیے بھی۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے، بہت سے لوگوں نے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب نے کون سا ایسا وظیفہ پڑھا کہ سارے لڑکے سارے لڑکیاں جو تھے بالکل سب صحیح رہے، کوئی ادھر ادھر نہیں گیا، کون سا وظیفہ پڑھا تھا؟ میں نے کہا سنو، اولاد کی تربیت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب ماں باپ دونوں درست ہوں، دونوں صحیح ہوں، دونوں میں سے ایک بھی گڑبڑ ہوگا تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ اور اس وقت میں ایک نقطے کی بات بتا دوں، الحمدللہ بہت سارے یہاں پر والدین موجود ہیں، یہاں پر باپ موجود ہیں، اور وہاں مدرسے میں مائیں موجود ہیں، وہ سب سن لیں، جب تک دونوں، اگر آپ اولاد کی تربیت صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود اپنے آپ کو درست کر دیں، آپ نماز پڑھیں تب آپ کی اولاد نماز پڑھے گی، آپ سچ بولیں تب وہ سچ بولے گی۔ اگر بچہ دیکھے گا کہ باپ صبح مسجد کی طرف جا رہا ہے، ماں مصلی پہ نظر آ رہی ہے، بچہ خود بخود نمازی ہو جائے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات، دونوں ایک دوسرے کا ادب کریں اور اولاد سے کرائیں، یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے۔ बाप बच्चों के सामने माँ पर हाथ उठाए और माँ बच्चों के सामने बाप को बुरा भला कहे, बच्चे के दिल में ना माँ की इज्जत है ना बाप की इज्जत। हमने कभी भी अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। और हमारी वालदाए मोहतरमा हमेशा वालदे ग्रामी के लिए हम वक्त जैसे मुरीद होता है इस तरह उनके काम करने के लिए तैयार रहते। फजर से पहले, क्योंकि वालदे ग्रामी रोजाना जागते थे, 100 नफिल रोजाना पढ़ते थे, फजर से पहले नाश्ता करते थे। आज किसी औरत को उठा दो जरा फजर से पहले नाश्ते के लिए, कहेगी खुद ही कर लो जाकर, मैं अभी सो रही हूं। वालदाए मोहतरमा पहले से उठकर उनके लिए नाश्ता तैयार करके और फिर रखती और खुद तहज्जुद पढ़ती थी और फिर फजर के लिए हमें उठा देती। ऐसी मोहब्बत करने वाली बीवी। और यही नहीं, जब वालदे गिरामी ने विसाल फरमाया, उसके 6 साल के बाद हमारी वालदाए मोहतरमा का विसाल हुआ। और आप जानते हैं कि हर माह की 13 तारीख को वालदे मोहतरम की महाना फातिहा होती, उसमें नाथानी होती है मगरिब से इशा, और मुरीदीन जो कुछ पढ़ते हैं वो पर्चे पे लिखकर हमें दे दे कि आप इसाले सवाब कर दे। तो जिस वक्त मैं आता था तो वालदा मोहतरमा फरमाती, एक कलामे पाक मेरी तरफ से भी लिख देना, एक कलामे पाक मेरी तरफ से भी लिख देना। हमेशा उन्होंने किया। वालदे गिरामी के बाद 6 साल वो हयात रही। अब 6 सालों में हर महीने एक कलामे पाक कितने हो गए? 72 कलामे पाक अपने शौहर के लिए उन्होंने पढ़ा है। कोई औरत आज 72 कलामे पाक हर महीने? क्यों? वजह क्या थी? सब काम हो चुके, फारिगुल बाल थी, तो हमेशा तिलावत करती रहती। कुरान खुला रहा, सुबह हो तो तिलावत हो रही है, शाम को तिलावत हो रही है, रात को तिलावत हो रही है, जब वक्त मिला तिलावत करती रहती। एक महीने में एक कलामे पाक आराम से मुकम्मल होता। इसीलिए मैं कहता हूं, मशवरा है मेरा, वैसे कोई अमल शायद नहीं करेगा, जो औरतें फारिगुल बाल हैं उन्हें चाहिए कि तिलावत कलामे पाक पर तवज्जो दें ताकि उनके शर से दूसरे लोग महफूज रहें। सही बात है ना? मैं तिलावत कलामे पाक करते नहीं, मोबाइल लेके बैठे रहे। एक तो मोबाइल की मुसीबत, फिर उसमें वो फ्री चीजें भी हैं और बहुत सारी चीजें, 1 घंटे बात करें तब भी फ्री फ्री चल रहा। ऐसा फ्री हुआ कि बिल्कुल ही फ्री हो गया आदमी, हर चीज से फ्री हो गया, नमाज से भी फ्री, रोजे से भी, सब चीज। तो ये मोबाइल की मुसीबत, सबसे पहली चीज ये कि फारिगुल बाल है, कलामे पाक लेके बैठ जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, बच्चों को ना पढ़ाएं तो खुद पढ़िए। आप देखते ना, हमारे खानदान की पहली बड़ी जो खवातीन गुजरी हैं, हमारी पुप्पी साहिबा, हमारे वाली साहब की दादी मोहतरमा, कितनी औरतें उनकी शागिर थी। जब देखा कोई काम नहीं, कलामे पाक पढ़ाने शुरू कर, कितनी बच्चियों को नाजरा कलामे पाक पढ़ा दिया, खुद पढ़ ली। और मेरे वालिद गिरामी अपनी दादी के मुताल्लिक फरमाते थे कि उनको कलामे पाक इतना अच्छा याद था कि फरमाते थे कि हम नीचे पढ़ते थे, वो ऊपर अपने कमरे में सुनती थी, वहां से गलतियां निकालती थी। तुमने ये लफ्ज गलत पढ़ा है, तुमने ये आयत गलत पढ़ी, इसको सही कर लो। हाफिज नहीं थी, हाफिज नहीं थी, लेकिन बता दिया करती थी ये लफ्ज गलत है, और जब हम देखते थे तो उसी तरह। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों माँ बाप दोनों दूसरे की इज्जत करें, खास तौर पर औलाद के सामने कभी ना लड़ें, कभी ना लड़ें, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल्लाकुम वअन्तुम लिबासुल्लाहुन, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। लिबास जिस तरह उयूब को छुपाता है, मियां बीवी एक दूसरे के उयूब को छुपाएं। नहीं, हम तो दूसरों को बयान कर रहे हैं, वो कह रहे मेरी बीवी ऐसी है, वो कह रहे मेरा शौहर ऐसा है, बच्चों के दिल में क्या क्या इज्जत हो। हमारी वालदाए मोहतरमा जब हम स्कूल का काम कर रहे होते और अब हुजूर किबला आवाज देते तो फरमाती दूसरी आवाज नहीं आनी चाहिए, पहली आवाज पर पहुंच जाओ। गौर कीजिए, दूसरी आवाज में ना सुनूं, पहली आवाज पर पहुंच जाओ। ये वालिद का अदब, और वालिद मोहतरम वालदा का अदब सिखाते, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो। दोनों ने एक दूसरे का अदब सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब बादब बन गए। ये मुरीदीन मोतकदीन के लिए एक मिसाल है। अगर आप अपनी औलाद को दुरुस्त रखना चाहते हैं, अपना बाहमी ताल्लुक दुरुस्त रखी, एक दूसरे का अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, एक दूसरे के वालदैन का अदब और एहतराम कीजिए। अच्छा, ये तो थी औलाद की तरबियत, इसके साथ साथ मुरीदीन की तरबियत, मोतकदीन की तरबियत। एक शख्स जो बहुत ज्यादा रिश्वत लेता था, राशि रेड हैंडेड पकड़ा गया, रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, पुलिस ने बंद कर दिया, मुकदमा चल रहा, जमानत पर रिहा हुआ। किसी ने कहा दरगाह शरीफ चले जाओ, हजरत दुआ कर देंगे, तुम रिहा हो। आगे आके उसने सही सही बात बताई, हुजूर मैंने रिश्वत ली है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हूं, ये केस है, ये सारी चीज, तो आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? फरमाया मदद मैं कर सकता हूं, पहले सच्चे दिल से तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो कि आइंदा ये काम नहीं करना। उसने कहा बिल्कुल, मैं आपके सामने सच्चे दिल से तौबा। फरमाया अब 1000 मरतबा अस्तगफार तुम्हें पढ़नी है, 1000 मरतबा अस्तगफार रोजाना। और वाकई उसने पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज की पाबंदी। जब तुम्हारी तारीख हो, केस की तारीख, उससे एक दिन पहले आ जा। तो केस की तारीख हुई, एक दिन पहले आया और आकर कहते हैं हजरत यूं या यूं, यूं का मतलब जैसे हथकड़ी लगेगी और यूं रिहाई, यूं या यूं। हजरत ने फरमाया यूं, चला गया और वहां गया, हेयरिंग हुई, अगली तारीख पड़ गई, फिर आ गया हुजूर ये हुआ है, फरमाया पढ़ इस्तगफार, रोजाना इस्तगफार पढ़वाई। अब क्या हुआ, दरगाह शरीफ में रमजान मुबारक में शबीना होता, 27वीं शबीना, तो इसका मुकदमा जिन जज साहब के पास था वो हजरत के मुरीद, वो भी शबीने में शिरकत के लिए आए। अब अगली सफ में मुजरिम, पिछली सफ में जज, उन्होंने देखा अरे ये कैसे खड़ा है, ये तो बड़ा बदमाश आदमी, इसको तो जमानत पे, ये हजरत के यहां शबीने में, और बेचारा तौबा कर चुका। खैर बहरहाल उन्होंने क्या किया, हजरत को जब ये शबीने से फारिग हो गए, कि हुजूर एक बात करनी, क्या कि वो जो आदमी खड़ा था ना अगली सफ में, जी खड़ा था, क्या हुआ? ये बहुत बड़ा राशि है, ये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और इसका केस मेरे पास है, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको सजा दूंगा, तो फिर दे दें, लेकिन आप इसके लिए दुआ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा देखो दुआ के लिए मना नहीं है। कहा नहीं नहीं आप दुआ नहीं करें, मुझे पता है आप दुआ करेंगे छूट जाएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है और ना आप मुझसे सिफारिश करेंगे। हजरत ने भाई मैंने आपसे कुछ कहा है? नहीं आपने कहा नहीं, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं कि आप मुझसे सिफारिश, भाई मैं कर ही नहीं रहा आपसे सिफारिश, आप क्यों मुझसे कह रहे। खैर वो चला गया, फिर वो आया केस से पहले, आप कहते हैं यूं या यूं, फरमाया यूं, फिर चला गया। इसी तरह मतलब होता रहा, जब केस बिल्कुल एंड पर पहुंचा तो फिर वो आया यूं या यूं, हजरत ने हाथ खोल के फरमाया यूं, खुशी खुशी चला गया। वहां पर गया, जज ने इसको देखा, कहा बाइज्जत बरी, बरी हो गया। अब बड़ा खुश है, मिठाई लेकर आया, हजरत मैं बरी हो गया, बरी हो गया। फरमाया हाँ ठीक है, बरी हो गया, आइंदा नहीं, मैंने सच्चे दिल से तौबा कर दी, मैंने ये धंधा ही छोड़ दिया, सब खत्म कर दिया, बिल्कुल सीधा साधा मुसलमान। अब जो सुनने की बात है वो है, उन्होंने हजरत को बुलाया चाय पे, आप मेरे साथ चाय पी ली, वारिद गिरामी चले गए वहां पर। तो चाय के दौरान कहा कि एक आदमी जो था उसको मैं सजा देना चाहता था, मैंने लिखा इतना जुर्माना, इतने साल बामुशक्कत, इतना जुर्माना इतने साल, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब मैं गया उसको देखा, मैंने बाइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने फरमाया उसकी वकालत मैं कर रहा था। उनका अच्छा आप कर रहे थे, आपने कोई ताबीज दिया होगा, मेरा दिमाग घूम गया, मैं मेहरबान हो गया। फरमाया मैंने तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अब वो तो क्योंकि जज थे ना, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तूने इसको क्यों छोड़ दिया, तो मैं कहूंगा ये हजरत साहब बैठे हुए, इन्होंने कोई ताबीज दिया था, मेरा दिमाग घूम गया, मैंने छोड़ दिया। अब आप क्या कहेंगे, आप बताइए आप क्या जवाब देंगे। हजरत ने फरमाया अल्लाह मुझसे पूछेगा ही नहीं, इनका क्यों? इसलिए कि जब वो आया था मैंने उसी के बारगाह में तो पेश कर दिया था। मौला ये जैसा भी है, गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन अब सच्चे दिल से तौबा कर रहा है, इसकी गलतियों को माफ फरमा। तो असल रिहाई तो वहां से हुई है, आपने क्या रिहाई दी? अगर वहां से हो गई तो आप सजा नहीं दे सकते थे, और अगर वहां सजा हो जाती तो आप रिहा नहीं कर सकते। ये है हजरत की ख्याल। तो इस तरह कितने लोगों को आपने, कितने लोग थे, मैंने सिर्फ एक वाकया बयान किया है, कितने लोग थे जो आपकी महफिल में आए और आपने सच्चे दिल से उनसे तौबा कराई, सच्चे पक्के नेक मोमिन मुसलमान बन गए, गुनाहों से ताइब हो गए और आगे चलकर नेक मुत्तकी परहेज़गार बन गए। सुल्तान महमूद गजनवी एक जगह से गुजर रहा था रात में, वो भेद बदल के गुजरता था। ये वाकया मैं सुना रहा हूं, इसका ताल्लुक इस वाकये से भी है, हजरत की जात से भी। मैं रब आखिर में बताऊंगा, बस थोड़ी सी ज्यादा देर नहीं, आप लोगों को काफी देर हो रही। तो इसने देखा असल में चोरियां हो रही थी बहुत, तो इसने भेद बदल के कहा मैं चोर पकड़ू। देखा एक जगह चार आदमी बैठे थे, ये पहुंच गए महमूद गजनवी, भाई तुम क्या हो? कहना हम तो चोर हैं। इन्होंने भी लिबास ऐसे ही पहना हुआ था। इन्होंने कहा भाई मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। अच्छा तुम्हें कर लें? उनका देखो हम में हर एक में एक कमाल है, तुम्हारे अंदर क्या कमाल है? इन्होंने कहा पहले तुम बताओ। एक ने कहा मेरे अंदर ये कमाल है कि मैं रात में किसी शख्स को देख लूं तो मैं दिन में पहचान लूंगा ये कौन है, कैसे भी अंधेरे में मैं देखूं और वो भेद बदल कर आए कुछ भी, मैं उसको दिन में पहचान लूंगा, इसको मैंने देखा। अच्छा दूसरे ने कहा मेरे अंदर कमाल ये है कि ऊंची से ऊंची इमारत हो मैं उस पर कमंद डाल सकता हूं। कमंद होती मैं डाल के वो रस्सी उसको पकड़ के फिर ऊपर चढ़ जाते, फिर चोरी करते ऊपर से जाता। अच्छा तीसरे ने कहा मेरे अंदर ये कमाल है मैं जानवरों की बोलियां समझता हूं। अच्छा जानवरों की बोलियां समझता। अच्छा तीन तो हाँ तीन थे, चौथे ये खुद थे। तो इन्होंने कहा अब तुम चौथे आ गए, तुम बताओ तुम्हारे अंदर कमाल, हमने तो अपने अपने कमाल बता दिए। इन्होंने कहा मेरे अंदर कमाल ये है कि अगर कभी तुम गिरफ्तार हुए तो मैं अपनी दाढ़ी हिला दूंगा, तुम सब आजाद हो जाओगे। इन्होंने कहा वाह ये तो सबसे अच्छी बात, हम कभी ना कभी पकड़े गए तो दाढ़ी हिला देंगे, हम सब आजाद, ये तो बहुत अच्छी बात। बस 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 ठीक है आओ तुम हमारे साथ आ जाओ। कहां जाने भाई? उन्होंने कहा आज बादशाह के महल में डाका डालना है। और बादशाह ये खुद महमूद गजनवी ने कहा चलो आज बादशाह के महल में डाका डाल। जब ये जाने लगे तो रास्ते में कुत्ता भौंकने लगा। जब कुत्ता भौंकने लगा तो जो जानवरों की बोलियां समझता था उसने कहा अरे ये कुत्ता कह रहा है कि तुम में से एक बादशाह है, तुम चारों में एक बादशाह है। अब सबने एक दूसरे को देखा, महमूद गजनवी ने कहा अरे छोड़ो भाई तुम जानवरों की बातों पर क्यों आ रहे हो, चलो चलो आगे चलो। उनका अभी भांडा फूट गया तो मैं इन चोरों को पकड़ूंगा कैसे। खैर बहरहाल वो आगे चले गए। अब जो कमन डालता था उसने उसको बना के हिलाया और फेंका महल के ऊपर, वो बाकी अटक गई, ये लोग चढ़ गए ऊपर। ऊपर चढ़े तो बादशाह ने बता भी दिया कि फलाना का खजाना है, ये तो खुद ही बादशाह था ना, भेद बदला हुआ। इन्होंने खजाना लूटा और लूट कर अपने अपने घर गए। जहां खजाना रखा महमूद गजनवी ने सब देखा। उसके बाद इन्होंने कहा भाई हिस्से करने, महमूद ने कहा भाई कल कर देंगे बाद में देखें। सुबह उठते इन्होंने ऑर्डर दे दिया भाई ये फना फना मकाम पे जाके सबको गिरफ्तार कर लो। सबको गिरफ्तार कर लिया। अब वो आ गए, यार ये बताया किसने, किसने बताया? कब वो चौथा जो था वो नहीं है, हम तीनों गिरफ्तार हो गए, वो चौथा किधर गया? अब बादशाह महमूद गजनवी बैठे हैं, वो तीनों आकर पेश हुए। तो वो जो जिसने कहा था मैं पहचान लूंगा वो पहचान गया। उसने कहा यही तो था, चौथा तो यही था, चौथा यही था, हाँ यही था भाई मैं पहचान लेता, रात में ये भेद बदला लेकिन ये बादशाह था, भेद बदल के हमारे साथ इसने डाका डलवाया और हमें पकड़वा दिया, अब क्या करें? जज ने फैसला दिया सबकी गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद आगे बढ़ा तो जिसने कहा था ना कि मैं पहचान लेता हूं वो आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर जहां पना एक अर्ज, जान की अमान, कहा अमान, अर्ज करूं करूं, कहा हुजूर तो रात को हमारे साथ है। मैं पहचान गया, बादशाह मुस्कुराया, कहा अच्छा ठीक है फिर आगे बोलो। कहा हम तीनों ने अपने कमाल दिखा दिए, अब आप भी तो अपना कमाल दिखाइए। हम तीनों ने दिखा दिए, आपने कहा था जब तुम गिरफ्तार होगे मैं दाढ़ी लाऊंगा सब आजाद हो जाओगे, हुजूर अपना कमाल भी दिखा दिया। बादशाह मुस्कुराया, बादशाह ने दाढ़ी हिलाई, कहा जाओ सब आजाद हो, सब आजाद हो, ठीक है। आज हम हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफी अल जिलानी नबर अल्लाह मरकदहू की बारगाह में हाजिर हैं। हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, हम नाकारा मुरीद आपके सही, हम नाफरमान मुरीद आपके सही, हम गाफिल मुरीद आपके सही, लेकिन आपकी बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि कयामत में अपनी दाढ़ी हिला दें ताकि हम सबकी निजात हो जाए, हमारी सिफारिश फरमा दें ताकि हम सबकी निजात हो जाए। और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, जिसकी सिफारिश करेंगे वो अल्लाह के ऐसे मकबूल हैं कि मकबूलों के पास हैं, मकबूलों की औलाद हैं, मकबूलों के जानशीन हैं, जो उनके मुंह से निकलेगा रब पूरा कर देगा। समझ में आई बात? तो हमें खुश होना चाहिए कि हम ऐसे पीर की बारगाह में हाजिर हैं। मार सूरत हजरत ने अपनी औलाद की भी तरबियत की, अपने मुरीदीन की भी तरबियत की, और इस दरगाह को सिलसिले अशरफिया का, अहले सुन्नत का एक ऐसा मरकज बना दिया जहां पर कोई इख्तलाफ नहीं। मदारिस में इख्तलाफ है, दीगर खानकाहों में इख्तलाफ हो या ना हो मुझे पता नहीं, बहरहाल मदारिस में इख्तलाफ है, उलमा में इख्तलाफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ में कोई इख्तलाफ नहीं है। बल्कि वो सारे इख्तलाफात वाले अगर यहाँ पर जमा हो जाएं तो उनके इख्तलाफ भी दूर हो जाए। और हम बस आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। आजकल खारजियत और नासबियत और दीगर चीजें चल रही हैं, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, कोई सोशल मीडिया पर इधर की उड़ा रहा है तो कोई उधर की उड़ा रहा है। हम अपने मुरीदीन मुतकदीन को, मुतवस्सिलीन को ये हिदायत करते हैं कि इनमें से किसी के तरफ न जाएं, अपने पीर की तरफ जाएं, उनके दामन से मुंसलिक रहे। जो उनका मसलक था, जो उनका तरीका था, हर एक को सीने से लगाया, लेकिन गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। हाँ वैसे सबको सीने से लगा लिया, और सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक के एक बात को दूसरी जगह पहुंचाना हरगिज ना करें, हरगिज ना करें। जो सुना उसको वहीं छोड़ दें, बस कोशिश करें इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, आपस में खुलूस और मोहब्बत के साथ रहें। वैसे ही क्या कम इंतजार है, वैसे क्या कम इंतजार। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर फिरते हैं शहरियत नहीं मिलती। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर फिरते हैं शहरियत नहीं मिलती। मैंने शजरा देखा है दुश्मना ने हैदर का, मैंने शजरा देखा है दुश्मना ने हैदर का, माँ का नाम तो मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। माँ का नाम तो मिलता है वल्दियत नहीं मिलती, वल्दियत ना मिले तो तुम समझ लो क्या हो। खैर बहरहाल हमें अशरफुल मशाइख ने अदब सिखाया, तसव्वुफ सराफा अदब है। मखदूम समनानी ने लताइफ अशरफी में फरमाया, बुजुर्गान दीन ने तसव्वुफ की बहुत सी तारीफें की, लेकिन मुझे जो तारीफ पसंद आई वो यही है कि तसव्वुफ सराफा अदब। बड़ों का अदब करो, अपने मशाइख का अदब करो, उलमा का अदब करो, इसी अदब में कामयाबी है, इसी में निजात है, और इसी में अमन है, इसी में सुकून है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने पीर मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गान सिलसिले अशरफिया के फैजान से मुस्तफीज फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।